नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति से समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हम अल बुसैदी से भी चर्चा की। कई देशों के शामिल होने के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष तेज हो गया है। अमरीका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और तेहरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बताते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय दूतावास आज और कल विशेष तौर पर तत्काल पासपोर्ट नवीनीकरण संबंधी कौंसुलर सेवा के लिए खुला रहेगा। दूतावास ने एक सूचना में बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए किसी भी सहायता के लिए सप्ताह में 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। मुख्य भाषण देते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्तूप ने कहा कि विकासशील और अल्प विकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में होने वाली चर्चाएं नई क्षमताओं, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई सोच पर केंद्रित होंगी।
अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्तूब ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र केंद्रित बहुपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा संपन्न होने पर भारत फिनलैंड संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सम्मान, लोकतंत्र और विधि सम्मत शासन मूल्यों पर आधारित वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान की चुनौतियों के विरुद्ध वैश्विक सहयोग के महत्व पर बल दिया। संधारणीयता पर दोनों नेताओं ने अल्प कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा दक्षता, जैव ईंधन, स्मार्ट ग्रिड और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा समाधान आगे बढ़ाने की व्यापक क्षमता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में दो नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और 3 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन के मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर खंड और मैजेंटा लाइन के दीपाली चौक से मजलिस पार्क खंड का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ये परियोजनाएं सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करेंगी और इससे पूरे महानगर के आवागमन में सुधार होगा। भारत T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रन ही बना सकी। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।